डॉक्टर क्रेग कीनर अधिनियम व्याख्यान 19। अधिनियम 18 पॉल कुरिंथ में आता है। 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह अधिनियम 18 पर सत्र 19 है। पॉल कोरिंथ आता है। खुशी की बात यह है कि आमतौर पर जब हम कभी कभी पीड़ित होते हैं तब भी बाद में दुःख का समय आता है। मैसेडोनिया पॉल और सीलास पर शारीरिक और शायद भावनात्मक रूप से बहुत कठोर था, लेकिन जब वे कोरिंथ पहुंचते हैं तो चीजें काफी हद तक शांत हो जाती हैं। एथेंस में मौखिक विरोध है, लेकिन पिटाई या इस तरह की चीजों के मामले में कोई उत्पीड़न नहीं है, और कोरिंथ के साथ भी ऐसा ही। कम से कम 18 महीनों तक उसे यह बहुत अच्छा लगेगा, और प्रभु वास्तव में रात्रि दर्शन में उससे बात करने वाले हैं और कोरिंथ में उसे इस तरह प्रोत्साहित करेंगे। खैर, आइए कोरिंथ को देखें। कोरिंथ एथेंस के निकट था। कोरिंथ अखाया की राजधानी थी। दरअसल सुसमाचार वहीं से फैला होगा, क्योंकि दो कुरिंथियों में पॉल अखाया के चर्चों के बारे में बात करता है। खैर, पद 2 में हम पढ़ते हैं कि उसकी मुलाकात एक्विला और प्रिसिला से होती है, क्योंकि उन्हें रोम से निष्कासित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सम्राट क्लॉडियस ने यहूदियों को इटली से निकाल दिया था। इसे सुएटोनियस ने भी प्रमाणित किया है। ऐसा कब हुआ, इस पर बहस चल रही है। यह आम तौर पर 41 या अधिक बार और संभवतः अधिक समय तक दिनांकित है, और मैंने इस पर लिखा है वर्ष 49। तीसरी शताब्दी में डियो कैसियस निष्कासन की पुष्टि नहीं करता है। डियो कैसियस का वह हिस्सा वास्तव में गायब है, लेकिन इसके बजाय वह इस बात की पुष्टि करता है कि क्लॉडियस के अधीन यहूदी मिल नहीं सकते थे, और वह 41 में रहा होगा। यह पहले रहा होगा कम प्रतिबंध, और फिर 49 में उन्हें निष्कासित कर दिया गया। यह लगभग निश्चित है कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि सुएटोनियस और ल्यूक दोनों स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। ल्यूक सुएटोनियस से पहले लिख रहा है। सुएटोनियस को यह निश्चित रूप से ल्यूक से नहीं मिला। वह हमें वह विवरण देता है जो ल्यूक नहीं देता है, और ल्यूक शायद देना भी नहीं चाहता होगा। लेकिन सुएटोनियस दूसरी सदी की शुरुआत में लिख रहे हैं। वह डियो कैसियस से बहुत पहले लिख रहे हैं, डियो कैसियस के लिखने से लगभग एक शताब्दी पहले। इसलिए हमारे पास यह मानने का अच्छा कारण है कि यह निष्कासन है। टिबेरियस के तहत भी इसी तरह का निष्कासन हुआ था, जब वास्तव में कई युवाओं को न केवल निष्कासित कर दिया गया था, बल्कि उन्हें लड़ने के लिए रोमन सेना में शामिल किया गया था और संभवतः अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह अनुमान लगाया गया है टिबेरियस के तहत निष्कासन के बारे में उन संदर्भों के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि रोम में लगभग 40 से 50 हजार यहूदी थे, जो शायद रोम की आबादी का 5% होगा। अब जब हम निष्कासन की बात करते हैं तो निष्कासन से हमारा मतलब है कि आधिकारिक तौर पर उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, ऐसा नहीं कि वास्तव में सभी लोग चले गए। अक्सर रोमन आधिकारिक लोकप्रिय घोषणाएं करते थे, इस समूह को रोम से निष्कासित कर दिया गया था। क्या वास्तव में सभी लोग चले गए? शायद नहीं। निष्कासन समाप्त होने के बाद और उनमें से कुछ वापस आ जाएंगे, उनके लिए अपनी संपत्ति वापस पाना बहुत कठिन होगा। इन चीजों को उतना लागू नहीं किया गया जितना उन्हें आदेश दिया गया था। इसलिए अधिकांश विद्वान सोचते हैं कि सुएटोनियस और विशेष रूप से ल्यूक की भाषा के बावजूद वास्तव में सभी यहूदी नहीं थे जो चले गए। लेकिन याद रखें कि ल्यूक कभी कभी सब कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से उपयोग करता है, जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 19 में पूरे एशिया को इफिसुस में पॉल के मंत्रालय के माध्यम से शब्द प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से यह पूरे एशिया में फैल गया, लेकिन क्या इसका मतलब वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति से है? यह बिल्कुल मैथ्यू और मैथ्यू 4 की तरह है। सीरिया में जो लोग बीमार थे उन्हें यीशु के पास लाया गया और उन्होंने उन सभी को ठीक किया। यदि उसने मैथ्यू अध्याय 4 में सीरिया के सभी बीमार लोगों को ठीक किया, तो हमें मैथ्यू के बाकी हिस्सों में सभी बीमार लोग कहां से मिलेंगे? एक्स में हमें सभी बीमार लोग कहां से मिलते हैं? तो वहां एक तत्व है, और यह सिर्फ बाइबल के लेखक नहीं थे। मेरा मतलब है कि यह सामान्य रूप से लेखक थे जो इस तरह से सभी का उपयोग करेंगे। जरूरी नहीं कि इसका मतलब हर व्यक्ति हो, बल्कि इसका मतलब बहुत व्यापक था। सुएटोनियस का कहना है कि यह एक क्रेस्टस के कारण हुआ। क्रेस्टस एक सामान्य दास नाम था, इसलिए यह रोम में एक सामान्य नाम था। यह वास्तव में एक ग्रीक शब्द था जिसका अर्थ दयालु होता है, लेकिन यह क्राइस्टस की एक सामान्य रोमन गलत वर्तनी भी थी, क्योंकि रोमन क्राइस्ट के अलावा उस नाम से परिचित नहीं थे। सुएटोनियस क्राइस्ट नाम जानता था, लेकिन उसके स्रोत ने शायद ऐसा नहीं किया होगा। और यहाँ के अधिकांश विद्वान सोचते हैं कि सुएटोनियस के स्रोत ने क्राइस्टस को गलत समझा, और रोम से यहूदी समुदाय के निष्कासन गड़बड़ी का संबंध एक क्राइस्टस से था। खैर, यह समझ में आएगा, क्योंकि ईसा मसीह क्या थे? एक मसीह एक राजा था, और यह रोम में बहुत अच्छा नहीं होगा। और साथ ही यहूदी समुदाय किस पर बहस कर रहा होगा? खैर, वे संभवतः किसी दास पर उतनी बहस नहीं कर रहे होंगे जितनी कि वे मसीह की पहचान पर बहस कर रहे होंगे। इसलिए अधिकांश विद्वान सोचते हैं कि वे इसी पर बहस कर रहे थे, और कम से कम कुछ यहूदियों को वहां से जाना पड़ा। निश्चित रूप से डिक्री जारी होने के बाद उकसाने वालों को शहर छोड़ना बुद्धिमानी होगी। जो लोग विवादों में थे उन्हें निकल जाना ही उचित रहेगा। ल्यूक इसका उल्लेख क्यों नहीं करेगा? याद रखें, ल्यूक क्षमा प्रार्थी लिख रहा है। जब आप क्षमा प्रार्थी लिखते हैं, जैसा कि जोसेफस ने लिखा था, तो आप अच्छी मिसालों का उल्लेख करते हैं। आप बुरे लोगों का जिक्र नहीं करते। और यदि इसका ईसा मसीह के बारे में बहस से कोई लेना देना था, तो ल्यूक के पास उस बिंदु पर जोर न देने का अच्छा कारण था। लेकिन एक्विला और प्रिसिला के लिए भी एक अच्छा कारण था, जो शायद यहूदी विश्वासी थे। हो सकता है कि पॉल द्वारा वे मसीह के प्रति एक हो गए हों, लेकिन हो सकता है कि वे रोम में पहले से ही यहूदी विश्वासी रहे हों। हम पहले से ही प्रेरितों के काम अध्याय 2 में रोम के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। पॉल के वहां पहुंचने या अन्य लोगों के साम्राज्य के केंद्र के रूप में रोम के पास वह सब कुछ नहीं था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन वहां कुछ आस्तिक भी थे। और वैसे भी उन्हें संभवतः वर्ष 49 के आसपास निष्कासित कर दिया गया था, जो इस कथा में फिट बैठेगा, क्योंकि जिन कारणों से हम देखेंगे यह संभवतः 51 के आसपास हो रहा है। एक वर्ष दें या लें, एक्विला और प्रिसिला या प्रिस्का। पॉल अपने पत्रों में औपचारिक नाम प्रिस्का और सिल्वानस औपचारिक लैटिन नाम का उपयोग करता है। ल्यूक अधिक अनौपचारिक नामों प्रिसिला और सिलास का उपयोग करता है, लेकिन ये वही लोग हैं। ये अनौपचारिक संस्करण हैं, पॉल द्वारा उपयोग किए जाने वाले औपचारिक लैटिन संस्करणों के अनौपचारिक लैटिन संस्करण, और हम इसे अन्यत्र पाते हैं। नए नियम के 6 में से 4 संदर्भ ऐसे हैं जिनमें अक्विला का उल्लेख करने से पहले प्रिस्का का उल्लेख किया गया है, जिससे पता चलता है कि वह उच्च स्तर की थी। प्राचीन काल में अक्सर इसके अपवाद होते थे, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि पति गुलाम पैदा हुआ था और पत्नी स्वतंत्र पैदा हुई थी, फिर वह पहले पत्नी का नाम लेगा। आम तौर पर अन्यथा यदि वह उच्च स्थिति की नहीं थी, तो इसमें पति का नाम पहले रखा जाता था। रोमन नामों के साथ रोम में ग्रीक और लैटिन भाषी यहूदियों के लिए रोमन नाम आम थे। किसी भी तरह से हर किसी के पास यह नहीं था, लेकिन यह आम था। फिर रोम में भी रोमन नागरिक थे। कुछ लोग सोचते हैं कि एक्विला संभवतः रोम में जेंस अचिलिया का मुक्त सदस्य था और यहीं से उसे अपना नाम मिला। हालांकि ल्यूक का कहना है कि वह पोंटस से था, इसलिए शायद यह पिछली पीढ़ी का पारिवारिक नाम था। वैसे भी यह विवादास्पद है। प्रिस्का एक रोमन नागरिक, एक यहूदी रोमन नागरिक, रोमन जेंस प्रिस्का, रोमन परिवार का नाम या कबीले का नाम प्रिस्का से संबंधित हो सकता है। हम पॉल के पत्रों रोमियो 16:3-5, 1 कुरिन्थियों 16 में पढ़ते हैं और हमने अन्यत्र पढ़ा है कि उनके पास एक घरेलू चर्च था। उन्होंने एक गृह चर्च का नेतृत्व किया। यह बहुत सामान्य बात थी। हम पहले ही अध्याय 12 में घरेलू चर्चों का उल्लेख कर चुके हैं। एक्विला और प्रिसिला या प्रिसिला और एक्विला का आर्थिक आधार क्या था? खैर, उनमें काफी गतिशीलता थी जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं थी। मेरा मतलब है, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यात्रा की, लेकिन अधिकांश लोगों ने अपना पूरा जीवन एक गांव या एक ही स्थान पर बिताया। वे पोंटस से रोम, कोरिंथ, इफिसस और रोम चले गए। हम देखते हैं कि ठीक है, कम से कम अक्विला ने किया था, लेकिन उनमें से 2 कम से कम रोम, कोरिंथ से इफिसस से वापस रोम तक थे। हम इसे पॉल के पत्रों में देख सकते थे। वे शिल्पकार और व्यापारी थे। शिल्पकारों और व्यापारियों को कभी कभी स्थानांतरित होना पड़ता था। व्यापारी अक्सर ऐसा करते थे। अक्सर प्रवासी जब भी यात्रा करते हैं, किसी नए शहर में जाते हैं, तो उन्हें उस मेजबान शहर के कानूनों के अनुसार रहना पड़ता है। वे व्यवसाय के लिए एक साथ मिल सकते थे। विभिन्न समूहों के विदेशी एक साथ मिलते थे और कभी कभी उन्हें अर्धस्वायत्त पलातुमा के रूप में पहचाना जाता था, एक व्यापार समूह जिसकी अपनी कुछ राजनीतिक स्वतंत्रता होती थी, जिसे निवासी एलियंस के समुदाय से अलग या अपने स्वयं के जातीय समूह के रूप में पहचाना जाता था। एक शहर, मुझे व्यापारिक समूह, जातीय समूह नहीं कहना चाहिए था। हम यह भी देखते हैं कि उनके पास कुछ आर्थिक साधन रहे होंगे, क्योंकि वे संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। मेरा मतलब है, औसत व्यक्ति शहरों में रहता था, ऊपरी मंजिलों में रहता था जहां वे वास्तव में कोई काम नहीं कर सकते थे। ऊपरी मंजिलों में वे कमरे जिनमें वे रहते थे सोने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं थे, और कभी कभी उनके पास खाना पकाने के लिए चारकोल ब्रेजियर होता था, लेकिन आम तौर पर यह बहुत बड़ा नहीं होगा। तो ज्यादातर लोग गरीब थे। वे संरक्षक बनने और अपने घर में लोगों को प्रायोजित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। आपके पास कुछ घर हो सकते हैं जहां आप लोगों को प्रायोजित कर सकें। यदि आपके कुछ पड़ोसी ऊपरी मंजिलों पर इन बड़े मकानों में एकत्र होते हैं, तो एक लंबा दालान होगा जो विभिन्न कमरों को जोड़ेगा, और इसलिए आपको एक लंबी जगह मिल सकती है जहां आप बैठक कर सकें। लेकिन निश्चित रूप से आपके पड़ोसियों को इससे सहमत होना होगा, और हो सकता है कि यहीं पर रोम के कुछ घरेलू चर्चों की बैठक हुई हो। वे शायद अपार्टमेंट चर्च रहे होंगे, लेकिन पहली मंजिल पर कभी कभी उनके पास सामान्य तौर पर अधिक जगह होती थी। उनके पास पहली मंजिल पर बेहतर अपार्टमेंट थे, और एक्विला और प्रिसिला, यदि वे अपने घरों में चर्च की मेजबानी कर रहे हैं, तो संभवतः उनके घर उस उद्देश्य के लिए काफी बड़े होंगे। वे पूर्वी प्रांतीय हैं और इस प्रकार यहूदी हैं। वह अनुकूल स्थिति नहीं थी, लेकिन वे सांस्कृतिक रूप से कुछ हद तक घुल मिल गए हैं। वे कारीगर हैं, जो एक निम्न शहरी व्यवसाय था, लेकिन यह उससे कहीं आगे था। यह निम्न स्तर का था, लेकिन किसानों की स्थिति से कहीं अधिक था। उनकी स्वतंत्रता, सापेक्षता और गतिशीलता से पता चलता है कि उनकी कुछ आय थी। कोरिंथ में आपके पास महत्वपूर्ण वर्ग असमानता है। और संभवतः रोम की तरह आपके पास नीचे की मंजिलों पर कुछ अमीर लोग रहते होंगे और उनके ऊपर गरीब लोग रहते होंगे। लेकिन आर्थिक वर्ग के मामले में आपके बीच कुछ अलगाव भी था। कोरिंथ में अमीर लोग विशेष रूप से कपाल के पास रहते थे, जो कोरिंथ में एक विशेष पड़ोस था। संभवतः वहां घरेलू चर्च अधिक थे और लोग वहां टहलते थे। हालांकि पहला हाउस चर्च संभवतः आराधनालय टिटियस जस्टिस हाउस के बगल में एक यहूदी क्षेत्र में होगा। शायद गयुस टिटियस जस्टिस, कुछ लोग सोचते हैं। कुछ महिलाएं कारीगर थीं। अधिकतर उन्होंने बेचने में मदद की। पति पत्नी कभी कभी व्यावसायिक साझेदारियां बनाते थे। इस अवधि में कभी कभी पत्नी के पैसों से भी। साझेदारी को सोसाइटी या सोसाइटी कहा जाता था। शुरुआत में वे कुरिंथ में क्यों थे और पौलुस शुरुआत में कुरिंथ में क्यों था? खैर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था और संभवतः ग्रीस में या मैसेडोनिया के दक्षिण में अचिया में सबसे महत्वपूर्ण यहूदी समुदाय था। रोमन तत्व प्रमुख है और प्रभावी भी। ईसाइयों के 17 नामों में से 8 जो हमारे पास कोरिंथ से हैं, कोरिंथियन चर्च के नाम लैटिन हैं। आपके पास क्रिस्पस, टिटियस जस्टिस, इरास्टस हैं, यदि इरास्टस वास्तव में सदस्य होता। सोस्थनीस ग्रीक है, लेकिन कई नाम, लगभग आधे नाम लैटिन में हैं। खैर, कोरिंथ में रोमन नाम वाले लोगों और लैटिन बोलने वाले लोगों की आबादी बहुत अधिक थी। कई यहूदियों के नाम रोमन थे, लेकिन यह प्रतिशत नहीं था। पॉल के पत्रों में नामित एक तिहाई लोगों के नाम रोमन हैं। तो यह गैर रोमन लोगों के बीच अपेक्षा से 10 गुना अधिक है। तो शायद वे रोमनों के समुदाय में भी कुछ पैठ बना रहे हैं। यदि आप कोरिंथ के नागरिक थे तो आप रोम के मानद नागरिक थे। इसकी स्थापना पहले एक दिग्गज कॉलोनी के रूप में की गई थी और उसके कारण उनके पास नव धनिकों का एक पूरा वर्ग था। दिग्गजों के अलावा बहुत से लोग वास्तव में वहां बस गए थे। आपके पास बहुत सारे रोमन स्वतंत्र व्यक्ति थे जो वहां बस गए, लेकिन वे आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे थे। रोम नष्ट हो गया था, मुझे लगता है लगभग 146 ईसा पूर्व। यह लंबे समय तक निष्क्रिय पड़ा रहा, हालांकि पुरातत्व से पता चलता है कि वहां यूनानी लोग थे जो वापस चले गए और वहां रहने लगे। लेकिन इसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सीजर के अधीन एक शहर के रूप में आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू किया गया था, और शायद सन 44 के आसपास। और इस बिंदु पर बहुत सारे रोमन आ गए। तो आपके पास रोमन उपनिवेशवादी हैं, लेकिन यूनानी भी ग्रामीण इलाकों से इस नव स्थापित शहर की ओर आ रहे थे, और वहां बहुत सारे विदेशी भी थे क्योंकि वह बहुत अधिक व्यापार वाला स्थान था। यह कोरिंथ के इस्तमुस पर ठीक था। इस्तमुस, उन्होंने वास्तव में एक नहर खोदने की कोशिश की। नीरो ने एक नहर खोदने की कोशिश की और सफल नहीं हुआ, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जिसे डायलकोस कहा जाता था, जहां से आप माल को खींच सकते थे। तो आप ग्रीस के दक्षिणी सिरे के आसपास नहीं जाना चाहते क्योंकि यह बहुत नौगम्य नहीं था, बहुत पथरीला इत्यादि। इसलिए यदि आप इटली से आ रहे थे तो आप या तो उत्तर की ओर जा सकते हैं और भूमि मार्ग ले सकते हैं, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, वाया इग्नाटिया, या आप इटली से नौकायन कर सकते हैं। आप आगे दक्षिण की ओर जा सकते हैं, ठीक है, आगे दक्षिण की ओर जाने के अन्य रास्ते भी हैं। लेकिन यदि आप ग्रीस से होकर जाना चाहते हैं और आप एशिया माइनर जाना चाहते हैं, तो आप एड्रियाटिक के पार और पानी के इस शरीर में तब तक जा सकते हैं जब तक आप कोरिंथ के इस्तमुस तक नहीं पहुंच जाते, और फिर माल को वैगनों जैसी किसी चीज में खींचकर पार किया जा सकता था। कभी कभी आप छोटी नावों का भी उपयोग कर सकते हैं, आप छोटी नावों को भी खींच सकते हैं। उन्हें पहियों के साथ किसी चीज पर रखकर उन्हें डायल कोस के पार खींचें और फिर डायल कोस के दूसरी ओर आपके पास एजियन सागर था और वहां से आप सीधे एशिया माइनर तक जा सकते थे। इस काल में एशिया माइनर सबसे समृद्ध रोमन प्रांत था, इसलिए एशिया माइनर और रोम के बीच बहुत अधिक मेलजोल था, तो यह एक बहुत समृद्ध शहर था। इसमें बहुत कुछ था। ठीक है, यदि आपने एक कुरिन्थियों को पढ़ा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं। इसमें बहुत अधिक यौन अनैतिकता भी थी, जो बंदरगाह शहरों में स्वाभाविक थी, जहां अक्सर नाविक महीनों तक घर पर नहीं रहते थे, हालांकि नाविक स्वयं प्रायः गुलाम थे। अक्सर इसी तरह से वे लोगों से इस तरह के काम करवाते हैं या बहुत बहुत गरीब लोगों से। लेकिन पुराने कोरिंथ के बारे में कहा गया था कि कोरिंथ की यात्रा हर व्यक्ति के लिए नहीं है, और कहा जाता है कि कोरिंथियनाइज यौन रूप से कोरिंथियन की तरह व्यवहार करता है। यह पहले के समय में एफ्रोडाइट को समर्पित वेश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि पुरातत्व से पता चलता है कि एक्रोकोरिंथ पर एफ्रोडाइट का मंदिर वास्तव में 1000 पंथ वेश्याओं को नहीं रख सकता था। शायद वे नीचे शहर में रह रहे थे और एफ्रोडाइट को समर्पित थे, लेकिन वह पुराने कोरिंथ में था। लेकिन न्यू कोरिंथ में अभी भी अनैतिकता की प्रतिष्ठा थी। हम अभी भी इसे इस अवधि के दस्तावेजों में पाते हैं, और यह एक बंदरगाह शहर के रूप में बिल्कुल स्वाभाविक था। इफिसुस के पास भी वह बहुत था। किसी भी मामले में कोरिंथ के पास कुछ और था, क्योंकि यह इस्तमुस पर एक बंदरगाह शहर था। ठीक है, वास्तव में इस्तमुस पर इसके अपने बंदरगाह थे, एक तरफ लाइकॉन और दूसरी तरफ कैनक्री, जहां रोमियो 16 में फोएबस था। छंद 1 और 2 और कैंक्री का भी उल्लेख है। प्रेरितों के काम 18 में श्लोक 18 के आसपास पॉल वहां से रवाना हुआ। किसी भी मामले में आपके पास बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे विदेशी वहां आ रहे थे, इसलिए कोरिंथ विविध हो गया था। पूर्वी भूमध्य सागर के बहुत से विदेशी लोग स्वाभाविक रूप से ग्रीक भाषा बोलते थे, हालांकि शहर के आसपास के लोग मुख्यतः लैटिन भाषा बोलते थे। उन्होंने अपने शिलालेखों में लैटिन भाषा का प्रयोग किया। शहर के इस निचले हिस्से को आप इसे टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों आदि से देख सकते हैं। उन्होंने जो लिखा था वह ग्रीक था, और जो वे अक्सर बोलते थे वह शायद ग्रीक था, जो दूसरी शताब्दी में फिर से प्रचलन में आया। किसी भी मामले में उनके पास एस्क्लेपियस बहुत बड़ा था, कैनक्री ठीक है, आइसिस और सेरापिस, और फिर एस्क्लेपियस जो एक ग्रीक पंथ था, कोरिंथ में और कोरिंथ के ठीक बाहर बड़ा था। लेकिन बहुत सारे विदेशी, जिनमें कई यहूदी भी शामिल हैं, तो फिर से यह उनके लिए बसने का एक प्राकृतिक स्थान था। अब हम देखते हैं कि पॉल उनके साथ एक ही व्यापार में काम करता है। यह पहली बार है जब हमें पता चला कि पॉल कोई व्यापार करता है। शायद यह कुछ ऐसा है जिसका उल्लेख ल्यूक आवश्यकता से अधिक करना चाहता है, क्योंकि यह अभिजात वर्ग द्वारा तिरस्कृत था, और पॉल वास्तव में 1 कुरिन्थियों 4:11 और 12 में अपने हाथों से काम करते हुए इसे अपने कष्टों में सूचीबद्ध करता है। लेकिन शारीरिक श्रम को दार्शनिकों द्वारा तिरस्कृत किया गया था, और यह विशेष रूप से अभिजात वर्ग द्वारा तिरस्कृत था। ऐसे 4 तरीके थे जिनसे एक ऋषि मजदूरी कमा सकता था। आप शुल्क ले सकते हैं, वह है ट्यूशन। हम में से कुछ लोग अब इसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। हम उन स्कूलों के लिए काम करते हैं जो ट्यूशन शुल्क लेते हैं। आपका कोई संरक्षक हो सकता है। आपको एक घरेलू साधु के रूप में काम पर रखा जा सकता है, भोज या कुछ और में मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और व्यक्ति कहेगा, ठीक है, मैं कला का संरक्षक हूँ। खैर, मैं शिक्षा का संरक्षक हूँ। मेरा अपना घरेलू ऋषि है जो मुझे व्याख्यान देता है, और मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह करता हूँ, जब तक कि वह जो कहता है उससे मैं सहमत होता हूँ। और अगर वह नहीं कहता जिससे मैं सहमत हूँ, तो मुझे दूसरा मिल सकता है, आप जानते हैं। वे हमेशा से नहीं जाने जाते थे, कभी कभी वे चापलूसी के लिए जाने जाते थे, लेकिन किसी भी मामले में दूसरा भीख मांग रहा था। अधिकांश दार्शनिकों को यह मंजूर नहीं था। इसे बहुत निम्न वर्ग माना जाता था, लेकिन सनकी लोगों ने यही किया। निंदक लोग सड़क के कोने पर खड़े रहते थे। उनके पास अपने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। तुम्हें पता है, एक लबादा। उनके पास भीख मांगने के लिए एक थैली होती थी, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जब उनमें से एक ने एक लड़के को अपने हाथों से पानी खींचते देखा, तो उसने अपना कप फेंक दिया। लेकिन उनके पास भीख मांगने के लिए एक थैली होगी और उनके पास एक लाठी होगी। अब वे कभी कभी लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ बहुत कठोर और बहुत मतलबी हो सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि सनकी लोगों के एक मामले में इस एक सनकी दार्शनिक ने कहा कि वह अभ्यास करेगा, और उसने दूसरों को मूर्तियों से भीख मांगने का अभ्यास करने की सलाह दी, ताकि आप इनकार किए जाने की आदत डाल सकें। लेकिन कभी कभी, और ऐसा भी हो सकता है, हमारे पास प्राचीन साहित्य में यह है, लेकिन यह अतिशयोक्ति हो सकती है। वे अपने कर्मचारियों का उपयोग कर सकते थे। यदि आपने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वे आपको डांटेंगे तो क्या होगा? लेकिन अगर आपने उन्हें पैसे दिए, तो वे आपको यह दिखाने के लिए आपका अपमान कर सकते हैं कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और निंदक ऐसे ही थे। एक सनकी व्यक्ति को एक भोज पर आमंत्रित किया गया था, और उसके चारों ओर सब कुछ बहुत अच्छा था, और थोड़ी देर बाद उन्होंने मेजबान की गोद में थूक दिया, और उसने कहा, तूने मेरी गोद में क्यों थूका? हमने कहा कि यहाँ बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, इसमें थूकने के लिए और कुछ नहीं था। वे कभी कभी खुद को यौन रूप से उत्तेजित करने या सार्वजनिक रूप से मलत्याग करने के लिए भी जाने जाते थे, क्योंकि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है। खैर, आप जानते हैं, पॉल स्पष्ट रूप से निंदक दार्शनिकों की उस परंपरा में नहीं था। उनकी कुछ सोच कुछ स्टोइक्स की सोच की तरह पत्राचार के कुछ क्षेत्र हैं, लेकिन पॉल, आप जानते हैं, इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। लेकिन खुले तौर पर प्रचार करना, ऐसा करने वालों में निंदक भी शामिल थे, लेकिन अन्य दार्शनिकों ने भी ऐसा किया, खासकर वे जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल सकी। इसलिए वह भीख मांग रहा था। कुछ लोग भीख मांगते थे, लेकिन फिर एक प्रकार ऐसा भी था जो संभवतः सबसे अधिक तिरस्कृत था। निंदक ऐसा नहीं करना चाहते थे, और अन्य दार्शनिक ऐसा करना या भीख मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन कभी कभी कुछ अन्य इसे भीख मांगने से बेहतर मानते थे। शारीरिक श्रम। कुलीन विचारधारा में यह बहुत ही अपमानजनक था। केवल आप जानते हैं, कुछ ऐसे शिल्प थे जिन्हें बेहतर माना जाता था। कहते हैं, एक लोहार से बेहतर था, लेकिन किसी भी मामले में स्टोइक क्लींट्स और मिसोनियस रूफस जैसे अपवाद थे, जिन्होंने आत्मनिर्भरता के स्टोइक विचार के काम को महत्व दिया था, लेकिन मैनुअल मजदूरों द्वारा इसे अधिक महत्व दिया गया था। वे इसके लिए पॉल का अनादर नहीं करेंगे, और यहूदी स्रोतों में इसकी प्रशंसा की गई थी। शमया। मैंने पहले हिलेल और शमया के बारे में बात की है। खैर, संतों की पिछली पीढ़ी के बारे में कहा जाता है कि वे शमया और अबतालियन थे। और शमया कहते हैं, श्रम से प्रेम करो, मिशने अबोट 110। रब्बी या रब्बान गमलियेल बेन यहूदा हनासी, बहुत बाद के रब्बी, उन्होंने कहा, पृथ्वी के मार्ग के साथ साथ टोरा का अध्ययन अच्छा है। दूसरे शब्दों में, काम करना। क्योंकि उनका परिश्रम पाप को भुला देता है। कभी कभी आज हम कहते हैं कि निष्क्रिय दिमाग शैतान का कार्यस्थल है या कुछ और। रब्बी एलियेजेर बेन अजरिया, यदि टोरा नहीं है तो पृथ्वी का कोई रास्ता नहीं है। यदि पृथ्वी का कोई रास्ता नहीं है तो कोई टोरा नहीं है। बाद में रब्बियों ने दूसरों पर निर्भरता के विरुद्ध चेतावनी दी, लेकिन दूसरी ओर आपके पास रब्बी नहुनिया बेन हकाना है। यदि आप टोरा का जुआ लेते हैं तो आप रोम के जुए से और पृथ्वी के रास्ते से मुक्त हो जाते हैं। बाद के सूत्रों ने यह भी आदेश दिया कि शिक्षक को भुगतान किया जाना चाहिए, तो अंततः यह एक पेशा बन गया और इसमें उन लोगों को अधिक शामिल किया गया जो पहले से ही स्वतंत्र रूप से अमीर नहीं थे या जिनके पास समर्थन का कोई अन्य साधन था। हालांकि प्रारंभिक यहूदी स्रोतों ने कुछ आधार शिल्पों का तिरस्कार किया, लेकिन कुछ शिल्प ऐसे थे जिनकी उन्होंने प्रशंसा की। चप्पल बनाने वाले बेकर बढ़ी। हम एक यहूदी शिक्षक के बारे में जानते हैं जो एक बढ़ी था और उसका पालन पोषण एक बढ़ी नाजरेत के यीशु ने किया था। चमड़े का काम करने वाले और शास्त्री। शास्त्री एक तरह से स्पष्ट हैं, लेकिन चमड़े का काम भी काफी दिलचस्प है क्योंकि पॉल शायद यही कर रहा होगा और हम कुछ क्षणों में इसके बारे में और बात करेंगे। कारीगरों ने कड़ी मेहनत की। उनका उत्पादन मुख्य रूप से घरों में छोटे पैमाने पर होता था, अक्सर भूतल पर मेजनाइन अपार्टमेंट और छोटी दुकानें होती थीं। अधिकांश व्यवसायों में दासों सहित परिवार के सदस्यों या घर के सदस्यों को रोजगार मिलता है। हालांकि सबसे बड़े व्यवसाय 100 दासों तक को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश व्यवसाय छोटे परिचालन पारिवारिक व्यवसाय थे। औसतन उनके पास 6 से 12 कर्मचारी होंगे। कार्य दिवस सूर्योदय से सूर्यास्त तक हो सकता है, लेकिन इससे उन्हें बातचीत के कई मौके मिले जो महत्वपूर्ण होगा और हम उसके बारे में और बात करेंगे। कुछ दुकानें शोरगुल वाली और खतरनाक थीं। कुछ लोहारों की दुकानें और मूर्तिकारों की दुकानें। मुझे याद है कि एक बार मैं कुछ अपार्टमेंट्स में हाथ से काम करता था और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा नापसंद थी वह थी जब मैं ईंटों के बीच में छेनी बना रहा था। मैं वहां छेनी मार रहा था जहां मोर्टार असमान था, उसे बराबर बनाने की कोशिश कर रहा था, और मैं पूरे दिन और पूरी रात ऐसा करता रहा और मेरे कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। मेरे ऐसा करने के कुछ देर बाद तक यह नहीं रुका, लेकिन कुछ दुकानें शोरगुल वाली और खतरनाक थीं। चमड़े का काम करने वालों और चप्पल बनाने वालों जैसे अन्य लोगों के लिए उनकी दुकानों में शांति थी और इसलिए आपके पास बात करने की क्षमता थी। मोची फेलिसियस सिलाई कर रहा था जबकि कोई जोर से पढ़ रहा था। कुछ लोगों ने वहां झपकी ले ली। कभी कभी लोग सिर्फ बात करने के लिए आते हैं ताकि आपकी बातचीत चलती रहे। जबकि कोई कुछ नहीं खरीद रहा था, तब भी आप कम से कम बातचीत तो करेंगे। दुकानें आमतौर पर एक कमरे वाली होती थीं। लोगों ने वहां काम किया। उन्होंने वहां अपनी आपूर्ति जमा की। वे वहां सामान प्रदर्शित करते और बेचते थे और परिवार अक्सर ऊपर की मंजिल पर या एक ही कमरे में मेजनाइन अपार्टमेंट में सोते थे। चमड़ा श्रमिक, और मैं यह सुझाव देने जा रहा हूं कि पॉल यही हो सकता है, चमड़ा श्रमिकों के पास कम से कम एक मेज, स्टूल, ऑल्स और चाकू होते थे। अपने अन्य उपकरणों को आकार में रखने के लिए पत्थरों को तेज करते थे और चमड़े के उपचार के लिए तेल और कालापन करते थे। रोनाल्ड हॉक इस ओर इशारा करते हैं। उन्होंने इस पर काफी शोध किया है। दुकानें आमतौर पर अगोरा या बाजार के पास होती थीं। नहीं, ठीक है, हाँ, बाजार के पास। कोरिंथ में वह रोमन फोरम के पास भी होगा जिसमें बीमा भी होगा, बीमा मंच होगा। खैर, इसमें मंच भी शामिल होगा, वह स्थान जहां से राज्यपाल अपने फैसले और आदेश दे सकते हैं। कारीगर वह एक आर्थिक वर्ग था जो सूक्ष्म उच्च वर्ग और विशाल निम्न वर्ग के बीच मध्यवर्ती था। वे आम तौर पर किसानों जितने गरीब नहीं थे लेकिन कम से कम शहरी निवासियों के बीच वे वहां के सबसे गरीब लोगों से बेहतर स्थिति में थे। लेकिन वे बहुत छोटे उच्च वर्ग या उच्च धन वर्ग से संबंधित नहीं थे। व्यापार सीखना। प्रशिक्षुता आमतौर पर परिवार या उसी व्यवसाय के अन्य परिवारों के भीतर 10 से 13 साल की उम्र में शुरू हो सकती है। मिस्र में कभी कभी लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन एक शिलालेख के अनुसार यह 25 वर्ष की आयु के बाद भी शुरू हो सकता है। रब्बियों ने यहूदी और अन्य पूर्वी भूमध्य सागरीय और सुदूर पूर्व के पिताओं से आग्रह किया कि वे अपने बेटों को भी उसी व्यवसाय में प्रशिक्षित करें जैसे वे करते हैं। तो पॉल ने अपने शुरुआती दिनों में अपने पिता से यह व्यापार बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा। तोरा के अध्ययन के साथ साथ आपसे उस अवधि में अक्सर दोनों करने की अपेक्षा की जाती थी। भले ही वह संभवतः काफी संपन्न परिवार से था, वह व्यापार भी सीख रहा था। अब कुछ लोग सोचते हैं कि पॉल एक तंबू निर्माता के रूप में एक कपड़ा कारीगर था। आमतौर पर कपड़ा मजदूर पॉल की तरह रोम के नागरिक नहीं थे, न ही वे टारसस के नागरिक थे। दरअसल पहली शताब्दी ईस्वी में कपड़ा श्रमिकों ने टारसस में विरोध प्रदर्शन किया था। टारसस में लिनेन श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि वे टारसस के नागरिक नहीं थे, जो यह सुझाव दे सकता है कि पॉल का परिवार कपड़ा श्रमिक नहीं था। अभिजात वर्ग द्वारा कारीगरों को गुलाम कहकर तिरस्कृत किया जाता था। सिसरो ने कहा कि कोई भी कार्यशाला एक स्वतंत्र व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। अभिजात वर्ग उन्हें सद्गुणों के अयोग्य और अशिक्षित मानता था। लेकिन फिर से अगर आप देखें कि मैनुअल मजदूर अपनी कब्रों पर शिलालेखों में खुद का वर्णन कैसे करते हैं, तो उन्हें अक्सर अपने काम पर गर्व होता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। तो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। मंडली के अधिकांश लोग इसे नकारात्मक रूप से नहीं देखेंगे कि पॉल ऐसा करता है, लेकिन संभ्रांत सदस्य उनके लिए पॉल के बारे में शर्मिंदा होने का एक कारण होगा। तुम्हें पता है, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। आइए हम आपका समर्थन करें, क्योंकि यदि आप काम कर रहे हैं और यह शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो यह शर्मिंदगी होगी। हम अपने साथियों को इसमें आमंत्रित नहीं करना चाहते। पॉल को कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्रों में इससे निपटना होगा। कोरिंथ में तंबू महत्वपूर्ण थे। स्थमियन खेलों के लिए आपको शामियाना चाहिए। उन बिंदुओं में से एक जहां पॉल संभवतः कोरिंथ में है, वह स्थमियन खेल है जो हर दूसरे वर्ष होता था। वह वहां तब होता है जब वे वर्ष 51 में अप्रैल या मई में होते थे। लेकिन तंबू और तंबू जैसी चीजों का उपयोग थिएटर वगैरह के लिए भी किया जाता था। टारसस में लिनन उद्योग बहुत बड़ा था। लिनन टेबरनाकोला का उपयोग व्यापारियों द्वारा बाजार स्टैंड के लिए और व्यक्तियों द्वारा सनशेड के रूप में किया जाता था, ताकि उनका उपयोग कोरिंथ के बाजारों में भी किया जा सके। टारसस का तंबू निर्माण पूरे भूमध्य सागरीय विश्व में प्रसिद्ध था। यहां तक कि यह टारसियन लिनन के लिए लिप्यंतरित भी प्रतीत होता है। यह रब्बियों में हिब्रू में लिप्यंतरित दिखाई देता है। गोएटिया का सिलिशियन ऊन प्रसिद्ध था। टारसस इसके लिए प्रसिद्ध था। गोएटिया इतना प्रमुख था कि वहां बने गर्म लबादों को कोलिसियम या सिलिसियम कहा जाता था, जो ऑगस्टस के समय से इटली में आयात किए जाते थे। कुछ लोग सोचते हैं कि पॉल के पिता ने वहां काम किया होगा, शायद सेना के लिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि इसी तरह उन्हें रोमन नागरिकता मिली। लेकिन प्राचीन साहित्य से हम जो जानते हैं उसकी संभावनाओं को देखते हुए यह कहीं अधिक संभावना है कि उन्हें मुक्तदासों के वंशज होने के कारण रोमन नागरिकता प्राप्त हुई। लेकिन दूसरों ने तर्क दिया है और मुझे लगता है कि वे सही हैं, हालांकि बहस अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक मजबूत मामला बनाया है। कम से कम मेरी वर्तमान राय तो यही है। पॉल शायद गोएटिया या लिनन के तंबू का बुनकर नहीं था। इसके लिए ऐसे उपकरणों की आवश्यकता थी जो यात्रा के लिए बहुत बड़े थे। पॉल बहुत गतिशील था। उसे बार बार घूमना पड़ता था, विशेषकर कोरिंथ पहुंचने से पहले। लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने थिस्सलुनीके में भी काम किया था, तो शायद उसके पास औजारों का एक बैग है जो वह टेंट और अन्य चमड़े के उत्पाद बनाएगा और मरम्मत करेगा। यहाँ तंबू बनाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह सामान्यतः चमड़े के काम में भी व्यापक रूप से प्रयुक्त होने लगा है। आप चमड़े से तंबू भी बना सकते हैं। कोरिंथ में चमड़े के काम की जरूरत वाले लोगों, विशेष रूप से नागरिक जो बहुत यात्रा करते हैं, का मतलब है कि कार्यशाला में ये बातचीत वह यात्रियों, व्यापारियों आदि तक पहुंच रही होगी। यह दिलचस्प है कि न्यू टेस्टामेंट में जिन 17 कुरिंथियों को नाम से जाना जाता है उनमें से 9 यात्रा पर थे, शायद व्यावसायिक कारणों से। संभवतः ये कुछ साधन और रुतबे वाले लोग थे। वे थे जिन तक यीशु में अधिकांश यहूदी विश्वासी नहीं पहुंच सके, लेकिन पॉल उन तक पहुंचने में सक्षम है। इस पर सबसे ज्यादा काम रोनाल्ड हैक ने किया है। यहां मैं सिर्फ रोनाल्ड हैक का अनुसरण कर रहा हूं और कुछ बिंदुओं पर चमड़े के काम के संदर्भ में रोनाल्ड हैक को उद्धृत कर रहा हूं। चमड़े के काम में 2 कार्य थे, कटाई और सिलाई। आप सीखेंगे कि चमड़े के टुकड़ों को कैसे काटा जाए ताकि उनका स्थान चमड़े की प्राकृतिक शक्तियों का लाभ उठा सके और इस प्रकार तनाव और खिंचाव का सबसे अच्छा सामना कर सके। और साथ ही बस्टिंग स्टिच, सीम स्टिच या फिलिंग स्टिच के साथ उन्हें एक साथ कैसे सिलना है। अंतिम 2, यदि सीमों को जलरोधक होना आवश्यक है। प्रशिक्षुता पूरी करने के बाद एक प्रशिक्षु को चमड़े के काम के लिए अपने स्वयं के उपकरण मिल सकते हैं। खैर, लिनेन बनाने के मामले में तंबू निर्माण की तुलना में चमड़े का काम निश्चित रूप से एक फायदा था। तंबू निर्माण फिर से किसी भी तरह से किया जा सकता है, लेकिन कपड़ा उद्योग में यह उतना तेज नहीं था, उपकरण उतने तेज नहीं थे और आप वहां अधिक बातचीत भी कर सकते थे। बाजार का धार्मिक परिवेश। खैर, कोरिंथ के पूरे बाजार में सार्वजनिक मूर्तियां थीं। पोसिडॉन, अपोलो, एफ्रोडाइट, हर्मीस और ज़ियूस। यदि आप बहुसंख्यक ईसाई संस्कृति में रहते हैं तो ध्यान रखें कि ईसाई अन्य संस्कृतियों में भी फल फूल सकते हैं। और यदि आप बहुसंख्यक गैर ईसाई संस्कृति में रहते हैं तो आप याद कर सकते हैं कि पहले ईसाई जो सुसमाचार फैला रहे थे उन्हें भी ऐसा करना पड़ा था। हम उन लोगों के साथ शांति से रह सकते हैं जो हमसे असहमत हैं, कम से कम हमारी ओर से। अगोरा में अधिकांश अभयारण्यों में एक अभयारण्य था। अधिकांश अभयारण्य अगोरा में थे। उनके पास इफिसियन आर्टेमिस का अभयारण्य था। हालांकि आप जानते हैं आर्टेमिस एक ग्रीक देवी थी। आर्टेमिस का इफिसियन संस्करण विशेष रूप से प्रसिद्ध था और इसलिए वहां यह वास्तव में कोरिंथ में भी इफिसियन आर्टेमिस का अभयारण्य था। डायोनिसस की छवियां थीं। एथेना बीच में थी। अगोरा के ऊपर आपके पास ऑगस्टस की बहन ऑक्टेविया का मंदिर था। तो आप जहां भी जाएंगे बुतपरस्ती की यादों से घिरे रहेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी स्थिति में ईसाई अच्छे ईसाई नहीं हो सकते। काम पर बात कर रहे हैं। लोग दिन भर काम करते थे, इसलिए बातचीत करते थे। ऐसी कहानियां हैं कि सुकरात और अन्य लोग मोची की दुकान या मोची की दुकान में राजनीति और दर्शन पर चर्चा कर रहे थे। यह एक ऐसी संस्कृति थी जो बातचीत और गपशप को महत्व देती थी। लोग अपने पड़ोसियों से बात करने के लिए खिड़कियों से बाहर झुक रहे होंगे। सड़कों पर ग्राहक या अगल-बगल के दुकानदार लोग शराब खानों में एक साथ शराब पी रहे थे और शराब खानों में एक साथ खाना खा रहे थे। रोम में ज्यादातर लोग अपने घरों में खाना नहीं बना सकते थे, इसलिए उन्हें बाजार में रोटी या जो चीजें वे खरीदती थीं, उनके अलावा अपना अधिकांश भोजन प्राप्त करने के लिए सड़क के स्तर तक नीचे जाना पड़ता था और शराब खानों में जाना पड़ता था। बाजार और उस तरह से खा सकता है। लोग सराय, रेस्तरां इत्यादि में सहकर्मियों के साथ बिजनेस लंच कर रहे होंगे। निंदक ऐसे स्थानों पर बौद्धिक प्रवचन में लगे रहे और कुछ अन्य दार्शनिकों ने भी ऐसा ही किया। खैर, काम पर मिशनरी उपदेश। प्रेरितों के काम 20 श्लोक 34 में पॉल अपने लंबे समय के बारे में बात करता है। 28:30 एक थिस्सलुनीकियों 2:9, 1 कुरिन्थियों 4:12, 2 कुरिन्थियों 12:14। कुछ ग्रंथों में उनके दिन रात सेवा करने की चर्चा है। कुछ ग्रंथों में उनके दिन रात काम करने का जिक्र है। हो सकता है कि वह एक ही समय में इनमें से कुछ कर रहा हो। दिन और रात का मतलब यह नहीं है कि पूरी रात सोए नहीं, लेकिन अगर आप दिन के कुछ हिस्से और रात के कुछ हिस्से में कुछ करते हैं तो यह मायने रखता है। और मुझे यकीन है कि पॉल जब काम नहीं कर रहा था तो वह अन्य काम कर रहा था, लेकिन यह वह था जो उसने केवल कुछ समय के लिए किया था। हो सकता है कि कुछ फंड आने से पहले वह यह काम करता रहा हो, लेकिन व्यापार समूह, कभी कभी परिवार जो व्यापार में काम कर रहे थे, एक साथ गिल्ड के रूप में संगठित होते थे और वे शहर की पूरी सड़क या हिस्से को नियंत्रित कर सकते थे। इस प्रकार आपके पास प्राचीन शहरों में कभी कभी ग्लास स्ट्रीट, इंसेंस स्ट्रीट, परफ्यूम स्ट्रीट, ज्वेलर्स प्लाजा, मोची मार्केट प्लेस, फिशमॉन्गर्स फोरम इत्यादि होंगे। मैं इसे येल इतिहासकार रैमसे मैकमुलेन से प्राप्त कर रहा हूं। लोगों द्वारा पूछे गए सबसे बुनियादी प्रश्नों में से एक यह था कि आप कहां रहते हैं, क्योंकि उससे व्यक्ति के व्यवसाय की भी पहचान हो जाएगी। आप क्या करते हैं? और लोग अक्सर जो उत्तर पूछते हैं वह है नाइयों के बीच या इसी तरह, और इसे लोगों के शिलालेखों या कब्रगाहों में भी लगाया जाता था। वहां हर चीज के कुछ एम्पोरियम या जनरल स्टोर थे, लेकिन आमतौर पर आप जानते थे कि जो विशेष सामान आप खरीदना चाहते हैं उसे पाने के लिए शहर के किस हिस्से में जाना है। और इस अवधि में कई लोगों के लिए, कम से कम पश्चिम में, इस पर विश्वास करना कठिन है, और शायद कई अन्य स्थानों के लिए, मैं नहीं जानता। लेकिन अक्सर एक ही व्यवसाय, एक ही पेशे के लोगों से मैत्रीपूर्ण सहयोग मिलता था। उनके पास समान आपूर्ति लाइनें थीं, और उन्होंने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बजाय एक साथ काम किया। उनके व्यापारिक संघ भी थे। ये मुख्यतः सामाजिक संस्थाएं थीं। वे महीने में लगभग एक बार मिलते थे, और कभी कभी जब वे इसके लिए एक साथ आते थे तो उन्हें सामान्यतः अकेले मिलने वाले भोजन की तुलना में कुछ अधिक अच्छा भोजन और शराब मिलती थी। वे किसी संस्थापक, संरक्षक या संरक्षक देवता के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं, और साथ ही एक संघ के रूप में वे एकजुट होंगे ताकि वे अपने किसी भी सदस्य को दफनाने का प्रबंध कर सकें। यदि कोई मर जाता है तो उसके दफनाने की देखभाल में हर कोई शामिल होता है। जब आप मरेंगे तो आपके पास ये सभी खर्चे नहीं होंगे। रैमसे मैकमुलिन बताते हैं कि सभी जमावड़े, चाहे जमावड़ा कसाईयों का हो या युवाओं का या जो भी हो, अपनी बैठकें उस देवता से प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं जिसे उन्होंने अपने निगमन के समय अनिवार्य रूप से चुना था। लकड़हारे के लिए वह सिल्वानस हो सकता है। रेस्तरां मालिकों के लिए यह बैचस हो सकता है। किसी भी मामले में एक विल और प्रिसिला, आप जानते हैं, यह एक बात है, चारों ओर मूर्तियां हैं, लेकिन उस भोजन में भाग लेना एक और बात है जो किसी बुतपरस्त देवता को चढ़ाया गया है या आपने इसके लिए किसी बुतपरस्त देवता को धन्यवाद दिया है। इसलिए वे संभवतः चमड़ा श्रमिक संघ में भाग नहीं ले रहे थे। चाहे वे शहर के चमड़े का काम करने वाले हिस्से में रहते हों, शायद वे शहर के यहूदी हिस्से में रहना पसंद करेंगे, लेकिन इटली से निकाले गए लोगों की संख्या को देखते हुए आप जानते हैं, आवास इस बात पर निर्भर हो सकता है कि आपको क्या मिला है। लेकिन किसी भी मामले में उस परिस्थिति को देखते हुए उन्हें खुशी होगी कि एक और यहूदी उनके साथ रहेगा, खासकर यदि वे सभी यीशु में विश्वास करते हों। रहने की स्थिति। खैर, इन्हें कोरिंथ की तुलना में रोम से कुछ हद तक बेहतर जाना जाता है, लेकिन रोमन उपनिवेश होने के कारण कोरिंथ ने कई मामलों में रोमन वास्तुकला का अनुसरण किया। तो रहने की कुछ स्थितियां। इटली में आपके पास अक्सर निचले हिस्से में रहने वाले अमीर लोगों के मकान होते थे। कम धनवान उच्चतर जीवन व्यतीत करेंगे। सबसे गरीब लोग शीर्ष पर छोटे कमरों में या कार्यशालाओं के ऊपर छोटी छतों में रहते होंगे। और वास्तव में जैसे जैसे वे ऊंचे होते गए, वे थोड़े कम स्थिर भी होते गए। अपार्टमेंट की इमारतें जर्जर हो सकती हैं। उस समय उनके पास बहुत मजबूत बिल्डिंग कोड नहीं थे। और एक किशोर रोम में विभिन्न चीजों का मजाक उड़ाता हुआ, वह एक व्यंग्यकार था, कहता है कि किसी भी दिन आप रोम में कहीं किसी इमारत के ढहने या जलने की आवाज सुनेंगे। उन चारकोल ब्रेजियर से सावधान रहें। बेशक उन्होंने स्वच्छता के लिए क्या किया। रोम अपनी नालियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पानी केवल निचली मंजिल तक ही बहता था, इसलिए इसे ऊपर पंप नहीं किया गया था। तो ऊपरी स्तर के अपार्टमेंट में लोगों ने क्या किया? क्या उनके पास अपनी चीजें रखने के लिए कंटेनर थे? अक्सर वे इसे सीढ़ियों के नीचे रख देते थे। इसे शहर के कूड़ेदान में ले जाया जाना था, लेकिन यदि आप बाथरूम में गए तो आपने इसे अपने चैम्बर पॉट में रख दिया। लोग इसे खिड़की से बाहर खाली करने के लिए जाने जाते थे। और यदि यह किसी राहगीर को टक्कर मारता है, जैसा कि यह कभी कभी करता है, तो वास्तव में आप पर इसके लिए मुकदमा चलाया जा सकता है यदि वे यह पता लगा सकें कि यह किसकी खिड़की से निकला था। लेकिन किसी भी स्थिति में इसे अक्सर सड़कों पर फेंक दिया जाता था। और वहां सार्वजनिक शौचालय भी थे, इसलिए आप सार्वजनिक शौचालय सुविधाओं का उपयोग कर सकते थे। लेकिन अगर आप इतनी दूर नहीं जाना चाहते थे या आपके पास इतनी दूर जाने का समय नहीं था, तो आपके पास अपना चैम्बर पॉट था। तो आपके पास परेशान करने वाले किराएदारों को बाहर निकालने के लिए हिट स्क्वाड के साथ कुछ झुग्गी मालिक भी थे। तो आप बहुत अधिक शिकायत नहीं करना चाहते थे। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संपत्तियों के किराएदारों के साथ अधिक प्रचलित था। मिस्र में, जहां हमारे पास पपीरी में बचे व्यावसायिक दस्तावेजों के संदर्भ में सबसे अधिक विवरण हैं, कभी कभी आपके पास एक कमरे के घर में 20 लोगों की भीड़ होगी। व्यावसायिक दस्तावेजों के अनुसार बचपन में मृत्यु दर और कभी कभी लोग एक चौथाई कमरे को किराए पर लेते थे या उसके मालिक होते थे। बहुत से लोग बहुत गरीब थे। ये वे नहीं हैं जिनके बारे में हम आम तौर पर पढ़ते हैं, बल्कि बहुत से लोग बहुत गरीब थे। मिस्र में बचपन की मृत्यु दर, जहां तक हम पपीरी से इसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं, 50% के करीब हो सकती है। बहुत सारे शिशुओं को छोड़ दिया गया, हालांकि मिस्रवासी इस पर विश्वास नहीं करते थे और बच्चों को पाल लेते थे और उन्हें गोद ले लेते थे, या रोमन कानून के तहत उन्हें दास के रूप में पाला जा सकता था। कुरिंथ में आराधनालय के बारे में हम पद 4 में पढ़ते हैं। शिलालेख आराधनालय के बारे में बताता है। कुरिंथ से एक शिलालेख मिला है जिस पर लिखा है, इब्रानियों का आराधनालय, जो ग्रीक भाषा में लिखा गया है। लेकिन यह अनिश्चित तारीख का है और लगभग निश्चित रूप से पॉल के समय से बाद की तारीख का है। यह अगोरा के पास पाया गया था, हालांकि हो सकता है कि दाल को वहीं फेंक दिया गया हो, लेकिन हम वहां यहूदियों के बारे में जानते हैं। दूसरी शताब्दी ट्राइफो वहां एक यहूदी शिक्षक थे। अगर जस्टिन ने उसे यूं ही नहीं बनाया तो मुझे लगता है कि शायद उसने उसे नहीं बनाया, हालांकि संवाद शायद उसने खुद ही लिखा था। लेकिन इसका मतलब यह होगा कि वहां एक यहूदी समुदाय था और हमारे पास इसका सत्यापन है, हालांकि हमारे पास इसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए कोरिंथ से पर्याप्त विवरण नहीं है। रोमन इतिहासकार अक्सर क्या करते हैं, वे अक्सर इन शहरों में से कुछ के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए एक स्रोत के रूप में अधिनियमों की पुस्तक का उपयोग करेंगे, जिनके बारे में उनके पास शिलालेखों आदि को छोड़कर अधिक वर्णनात्मक विवरण नहीं है। अधिनियम 18 और पद 5। हम कुरिंथ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वहां के यहूदी समुदाय के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। अधिनियम 18 और पद 5। सिलास और तीमुथियुस आए और थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को यह संदेश दिया कि वे वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। पॉल इस बात से बहुत खुश था और तभी उसने थिस्सलुनीकियों के लिए लिखा, और वे फिलिप्पी से एक उपहार भी लाए, और हम इसके बारे में 2 कुरिन्थियों 11 में पढ़ते हैं। कुरिन्थियों में से कुछ शिकायत कर रहे हैं कि वह उन पर निर्भर नहीं है, और उन्हें पता चला है कि उसने फिलिप्पी से समर्थन स्वीकार कर लिया है, और वह कहता है, देखो मैंने तुम्हारी सेवा करने के लिए अन्य कलीसियाओं को लूट लिया। वह अतिशयोक्तिपूर्ण, विडंबनापूर्ण कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वह कुरिन्थियों को अपना समर्थन नहीं करने देना चाहता था, क्योंकि वे ऐसा व्यवहार करना चाहते थे जैसे वे उसके संरक्षक हों और वह उनका ग्राहक हो। वह कहने की आजादी चाहते थे जो उन्हें कहना चाहिए था। दरअसल एक पादरी और एक सहयोगी पादरी के रूप में मैंने कभी वेतन नहीं लिया है, लेकिन मुझे कई अन्य चीजों के लिए भुगतान मिलता है। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पादरियों और सहयोगी पादरियों को वेतन नहीं मिलना चाहिए। मुझे पढ़ाने के लिए भुगतान मिलता है। मुझे लेखन के लिए मिलने वाले भुगतान की तुलना में पढ़ाने के लिए अधिक भुगतान मिलता है, भले ही लेखन के लिए मुझे अधिक काम, शोध और लेखन करना पड़ता है। लेकिन फिर वे उम्मीद करते हैं कि इसे कक्षा में ले जाया जाएगा, और फिर मैं ऐसे बकवास करता हूं जैसे कि मैं अभी इन सभी प्रकार के विवरणों के बारे में बकवास कर रहा हूं। लेकिन फिर भी कृपया उन्हें मुझे भुगतान न करने के लिए न कहें, क्योंकि वैसे भी कुछ समर्थन पाना अच्छा है ना? लेकिन वैसे भी पॉल को फिलिप्पी से एक उपहार मिलता है और फिर वह इस काम को करना बंद कर पाता है, कम से कम पूर्णकालिक, और वह खुद को पूरी तरह से मंत्रालय के काम में समर्पित करने में सक्षम होता है। और आराधनालय में चीजें एक तरह से विभाजित हैं। कुछ लोग उसकी बात पर विश्वास करते हैं और उससे सहमत होते हैं, और कुछ लोग नहीं मानते, और उनमें से कुछ जो ऐसा नहीं करते, पौलुस आराधनालय पर कब्जा नहीं करता, वह छोड़ देता है। लेकिन वे टिटियस जस्टिस के घर के बगल में जाते हैं, जो स्पष्ट रूप से आराधनालय के लिए एक धनी, अन्य जाति, ईश्वर भयभीत दाता था, और आप लोगों को दाता के रूप में नहीं लेना चाहते। यदि आप उन्हें दाता मान लें तो वे परेशान हो जाते हैं। वैसे भी आराधनालय विभाजित है, लेकिन पॉल आश्वस्त है कि वह सच बोल रहा है। वे आश्वस्त हैं कि वे सही हैं। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि टिटियस जस्टिस गयुस जैसा ही व्यक्ति है जिसका उल्लेख रोमन 16:23 में कोरिंथ में पूरे चर्च के मेजबान के रूप में किया गया है, हालांकि इसका मतलब क्या है, इस पर बहस चल रही है। शायद इसका मतलब यह है कि वह मूल मेजबान था। ऐसी स्थिति में वह यहां हो सकता है या शायद इसका मतलब यह है कि वह पॉल की तरह आने वाले लोगों की मेजबानी करता है। शायद इसका मतलब यह है कि वह इतना अमीर है कि उसके पास एक संपत्ति है, और शायद कोरिंथ शहर के ठीक बाहर एक समृद्ध जगह जहां हर कोई समय समय पर इकट्ठा हो सकता है। रोमियो 16:23 में वास्तव में क्या मतलब है, इस पर बहस चल रही है। लेकिन गयुस टिटियस जस्टिस की तरह एक आधिकारिक कथा शीर्षक के बजाय एक परिचित उपनाम था, इसलिए पॉल उसे परिचित स्तर पर ऐसा कह सकते हैं। मान लीजिए ल्यूक टिटियस जस्टिस की आधिकारिक उपाधि का उपयोग करने जा रहा है। यह निश्चित नहीं है कि यह वही व्यक्ति है, लेकिन ऐसा हो सकता है। याद रखें, उनके तीन नाम थे। रोमन नाम गुप्त टिटियस जस्टिस संभवतः इंगित करता है कि यह एक रोमन नागरिक है। शायद वह जूलियस सीजर के अधीन न्यू कोरिंथ में बसे रोमन परिवारों में से एक से हैं। वह घर जहां वे शुरू में मिले होंगे। खैर, औसत ट्राइक्लिनियम, जो एक विशाल रोमन घर में भोज के लिए सबसे अच्छा कमरा था, कोरिंथ सहित औसतन लगभग 36 वर्ग मीटर था, और आदर्श रूप से इसमें लगभग 9 लोगों को रखा जा सकता है। इसमें 12 लोग बैठ सकते हैं। यदि आप उन्हें ठूंस ठूंस कर भरेंगे तो इसमें वास्तव में अधिक लोग आ सकते हैं, लेकिन भोज के लिए उन्हें सोफों पर लेटाने के मामले में 9 से शायद 12 तक प्रथम श्रेणी में बैठना या लेटना ट्राइक्लिनियम में होगा। अच्छा, यदि आपके पास अन्य लोग भी हों जो आना चाहते हों तो क्या होगा? खैर, आपका आलिंद अभी भी मौजूद था। सामान्य फर्नीचर के साथ आप लगभग 30 से 40 लोगों को वहां रख सकते हैं, हालांकि आपके पास अभी भी इम्प्लुवियम होगा, जो बारिश के पानी को फर्श के ठीक बीच में एकत्र करता है, क्योंकि आपके पास बीच में खुली छत थी। लेकिन आपके पास वहां 30 से 40 और लोग हो सकते हैं। इसलिए जेरोम मर्फी ओकॉनर ने इस पर विशेष रूप से जोर दिया है। दूसरों ने कहा है, ठीक है, आप जानते हैं, सभी घर बिल्कुल एक जैसे नहीं थे, लेकिन यह कम से कम हमें सोचने के लिए एक तरह का मौका देता है। यदि आप अधिनियमों और पॉल के लेखन में नामित सभी कुरिंथियों और उनके परिवारों को जोड़ दें, तो आपके पास लगभग 50 लोग हो सकते हैं। लेकिन संभवतः 50 से अधिक लोग थे, लेकिन इनमें से कुछ लोगों के नाम चर्च के नेता या उच्च स्तर के लोग थे। लेकिन 50 लोगों के साथ भी शायद आपके पास कई हाउस चर्च थे, और उस पर विश्वास करने का कारण भी है, सिवाय इसके कि जब आपके पास गए उसके पूरे चर्च में वे सभी एक साथ हों। यह इस पर निर्भर करता है कि हमने उसे रोमियो 16:23 में कैसे पढ़ा, जो से लिखा गया था कोरिंथ के ठीक बाहर कैनक्री। घर में मिलने से परिवार जैसा माहौल मिलता है, और यह वास्तव में उपयोगी है। मेरा मतलब है, यह सिर्फ इसलिए उपयोगी नहीं है क्योंकि उनके पास बस इतना ही उपलब्ध था। यह इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि आप उन संबंधों का निर्माण करते हैं जिन्हें आज हम छोटे समूह कहते हैं। वहां एक गतिशीलता है, और एक कुरिंथियों 14 में पॉल द्वारा उल्लिखित कुछ बातों की गतिशीलता है, जहां आप सभी एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हैं। खैर, आप 1000 लोगों के चर्च में ऐसा नहीं कर सकते। प्रत्येक के पास ईश्वर से मिले अपने अपने उपहार होने की एक गतिशीलता है, जहां हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, और 100 या 200 लोगों के चर्च की तुलना में घर के चर्च में अधिक आमने सामने तरीके से एक दूसरे को जान सकते हैं। इसीलिए कुछ मेगा चर्चों में भी छोटे समूह होंगे, ताकि उस गतिशीलता को एक तरह से पुनः प्राप्त किया जा सके, क्योंकि चर्च इमारत नहीं है, हम चर्च हैं, हम भगवान के लोग हैं। और इसलिए जब हम चर्च करने के लिए मिलते हैं, तो हम जो कर रहे हैं वह संबंध परक है, और यदि यह संबंध परक नहीं है, तो हम प्रारंभिक चर्च की गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें मिलना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कुछ और भी है जो हम जोड़ सकते हैं। अध्याय 18 और श्लोक 8 में क्रिस्पस वह आराधनालय के नेताओं में से एक है। वह आता है आराधनालय के नेता के रूप में। वह संभवतः संपन्न व्यक्ति है। अक्सर आराधनालय के नेता आराधनालय के रखरखाव के लिए अपने स्वयं के साधनों का उपयोग करते हैं। अक्सर इसी तरह वे आराधनालय के नेता या आराधनालय के शासक बन जाते हैं। अध्याय 18 छंद 9 और 10 में और वैसे भी जब 1 कुरिन्थियों 1 में पॉल के बपतिस्मा लेने की बात आती है तो वह ऐसा है, ठीक है, मैंने क्रिस्पस और गयुस को बपतिस्मा दिया। मुझे नहीं पता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया है या नहीं। ओह हाँ, मैंने इस व्यक्ति को बपतिस्मा दिया। और वह उन लोगों से निपट रहा है जो सोच रहे हैं कि उसने अपने नाम पर बपतिस्मा लिया है। और यह ऐसा है जैसे, नहीं, आप बपतिस्मा के बिंदु से चूक गए। यह यीशु के लिए है। उनका बंटवारा हो गया। यह कभी कभी घरेलू चर्चों का एक नुकसान है। आप लोगों को जितने अधिक छोटे समूहों में विभाजित करेंगे, यह उतनी ही अलग अलग दिशाओं में जा सकता है। लेकिन अधिनियम 18:08 यह उसके बपतिस्मा, क्रिस्पस के बपतिस्मा के बारे में भी बात करता है। और उनके पास था। मैं यह सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह उन चीजों में से एक है जिसके बारे में पुरातत्व हमें सूचित करता है। लेकिन उनके पास बहुत सारे स्थान थे जहां वे बपतिस्मा ले सकते थे। उनके पास फव्वारा घर थे। कोरिंथ में हर जगह तालाब थे। उनमें से कुछ देवताओं को समर्पित थे। और फिर आप वहीं सारोनिक खाड़ी पर भी हैं और आपके पास एजियन सागर है। मेरा मतलब है बपतिस्मा के किसी भी माध्यम से जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं, लोगों को बपतिस्मा देना कठिन नहीं होगा। तो अधिनियम 18:9-10 बाइबल के दर्शन और सपनों में विशेष रूप से अक्सर भगवान या स्वर्गदूत बोलते हुए शामिल होते हैं, विशेष रूप से नए नियम में, लेकिन विशेष रूप से नहीं। मेरा मतलब है निःसंदेह यूसुफ के सपने, फिरौन के सपने, डैनियल के कुछ दिलचस्प सपने थे और नबुकदनेस्सर के। लेकिन किसी भी मामले में बुतपरस्त और अक्सर शुरुआती यहूदी स्रोतों में मृत व्यक्तियों के सपने दिखाई देते थे। नए नियम में हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास बाइबल में ऐसा नहीं है। आपके पास मैसेडोनिया का यह व्यक्ति कह रहा है, यहां आओ, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वह मर चुका है। तो किसी भी मामले में पॉल के पास इनमें से एक प्रोटोटाइप आदर्श सर्वोत्तम प्रकार की दृष्टि और सपना है जहां भगवान या एक देवदूत प्रकट होते हैं। यहां प्रभु यीशु उसके सामने प्रकट होते हैं जैसा कि अधिनियमों में कुछ अन्य बार होता है। वे मेरे पसंदीदा सपने हैं जिनमें मैंने स्वयं यीशु को देखा है। वह बहुत दयालु है। वह बहुत दयालु है। इससे मुझे उससे और भी अधिक प्यार हो जाता है। परंतु फिर भी प्रभु उससे कहते हैं, मत डर। यह आश्वासन के बयानों में आम है और यह भविष्यवाणियों में बहुत आम है। अक्सर जब भगवान या देवदूत किसी को दिखाई देते हैं, चाहे जागते हुए या सपने में, तो सबसे पहली बात वे यही कहते हैं, डरो मत। और आप देख सकते हैं क्यों। यह एक बात है जब मैं सपने में यीशु को देख रहा हूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा है। खैर, मेरा मानना है कि कुछ लोगों ने वास्तविक जीवन में स्वर्गदूतों को देखा है जो उन्हें किसी प्रकार की महिमा में दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। अगर मुझे कभी इसका अनुभव होता है तो शायद मैं चाहूंगा कि देवदूत मुझसे कहे, डरो मत, क्योंकि यह हम में से अधिकांश के लिए अनुभव के सामान्य दायरे से बाहर है। लेकिन किसी भी मामले में प्रेरितों के काम अध्याय में फिर भी यह कहा गया है, तुम्हारे जवान स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं तो बस सपने देखता हूँ। खैर, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन वैसे भी मुझे ऐसे कोई सपने नहीं दिखे हैं जहाँ मैंने वास्तव में अपनी खुली आंखों से कुछ देखा हो। लेकिन किसी भी मामले में वे चीजें भी बाइबल आधारित हैं, बशर्ते कि दृष्टि पवित्र शास्त्र से जो कुछ भी हम जानते हैं उसके अनुरूप हो, जो हमें रहस्योद्घाटन के सभी दावों के लिए एक मापने वाली छड़ी देता है। अधिनियम अध्याय 18 और पद 11। पॉल ने वहां 18 महीने बिताए। इसलिए बाद में जब पॉल कुरिन्थियों को लिखता है तो मेरा मतलब है उनके पास पहले से ही पॉल की कुछ शिक्षाएं हैं, हालांकि उसके जाने के बाद से कुछ चीजें बदल गई हैं। कोरिंथ में वह तेज गर्मियों के लिए वहां रहा होगा। वहां हवा की धाराएं मिलती थीं। एक संकी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि चूंकि वह सड़क पर रहता था, इसलिए वह मौसम के आधार पर एथेंस और कोरिंथ के बीच आता जाता रहता था। स्मिथियन गेम्स 51 के अप्रैल से मई के बीच हुए थे, इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि पॉल वहां मौजूद रहे होंगे। 1812 में पॉल अखाया में है। कोरिंथ उसकी राजधानी है। और 2 कुरिन्थियों 1, हम जानते हैं कि चीजें कुरिंथ से आगे अखाया के कुछ अन्य हिस्सों तक भी फैली हुई हैं, अखाया के चर्च जिनके बारे में वह बात करता है। अखाया का गवर्नर एक गवर्नर था। 27 ईसा पूर्व से 15 ईस्वी तक और फिर 44 ईस्वी के बाद से उनका अपना सूबेदार था, इसलिए इस समय उनके पास एक होना चाहिए था। कोई व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा था, वह एक प्रस्तोता से राज्यपाल बन जाता था, एक राज्यपाल से एक कौंसल बन जाता था, जो उन लोगों में से एक था जो निश्चित रूप से सम्राट के अधीन रोम का प्रभारी होता था। गैलियो की पहचान यहाँ 1812 में हुई थी। हम रोमन साहित्य में अन्यत्र गैलियो के बारे में जानते हैं। वह प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक सेनेका द यंगर का भाई था, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। वह सेनेका वक्ता सेनेका द एल्डर का पुत्र था। उनका जन्म स्पेन के कोर्डोवा में हुआ था, जहां सेनेका रहती थी, लेकिन जिस धनी वक्ता का मैंने अभी उल्लेख किया है, उसने उसे गोद ले लिया और उसका नाम बदल दिया गया। मूल रूप से वह मार्कस एनीस नोवाटस था, लेकिन अब उसका नाम गैलियो है। और वह अपने आकर्षण और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। इस परिच्छेद में उनके आकर्षण से ज्यादा उनकी बुद्धि के लिए, लेकिन वह अपने आकर्षण और अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उसके दोस्त उसे पसंद करते थे। जाहिरा तौर पर उन्हें वर्ष 51 के अप्रैल में कोरिंथ भेजा गया था और उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, जैसा कि आपको उम्मीद थी, वर्ष की 1 जुलाई को। तो वर्ष 51 में, यही एक कारण है कि हम उस समय की तारीख बता सकते हैं जब पॉल कोरिंथ में था, क्योंकि वह गैलियो के सामने आता है। क्लॉडियस द्वारा यहूदियों को रोम से बाहर निकालने के आदेश के बाद पॉल संभवतः 49 के अंत में पहुंचे, और इसीलिए उन्होंने प्रिसिला और एक्विला को पहले से ही वहां पाया, या 49 के अंत में या 50 की शुरुआत में पहुंचे। 1952 जुलाई से पहले आमतौर पर प्रोकोंसल कुछ वर्षों के लिए वहां रहेगा, लेकिन गैलियो ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। उन्होंने अपने कार्यालय का 1 वर्ष भी पूरा नहीं किया। जुलाई 52 से पहले वे बीमार हो गए और उन्हें चले जाना पड़ा। इसलिए एक्ट्स बहुत सटीक है। ये बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं। 49 में क्लॉडियस के तहत निष्कासन, और अब 51 में जब गैलियो गवर्नर है। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि ल्यूक जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई संदर्भ कार्य हो जहां वह इन चीजों को देख सके। यह हमें आधुनिक पुरातत्व से पता है, लेकिन इसमें कोई मात्रा नहीं थी। ल्यूक पुस्तकालय में शेल्फ को हटा सकता था और कह सकता था, ठीक है, इस तिथि पर यह गवर्नर था, और इसलिए यह पॉल पर फिट बैठता है। इसके बजाय यह कुछ ऐसा होगा जो उसने पॉल से सीखा होगा। और इसलिए एन शेरविनवहाइट, जो रोमन कानून के विशेषज्ञ थे, ने न्यू टेस्टामेंट में रोमन कानून और रोमन समाज पर एक किताब लिखी और इस तरह के विवरणों पर अधिनियमों की सटीकता के बारे में बहुत उत्साहित थे। हालांकि वर्ष 51 में वह अशांति का समय था। हम जानते हैं कि उस समय वहां भोजन की कमी थी और कोरिंथ में बहुत अशांति थी, तो यह उस अशांति का एक हिस्सा था। उसे बीमा के सामने लाया गया है। कोरिंथ के मंच के पूर्वी छोर पर रोमन रोस्ट्रा की तरह कोरिंथ के मंच की निचली छत को देखते हुए स्तंभों वाली दुकानों के सामने एक बीमा था। यह लगभग 500 फुट लंबा ऊंचा मंच था। यह साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधिकरण था। इसलिए जब पॉल 1 कुरिन्थियों 6 में बोलता है कि आप अन्य जातियों की अदालतों के सामने चीजें क्यों ले जाते हैं, तो वे शायद बीमा की कल्पना कर रहे हैं। इसे सम्राट ऑगस्टस के अधीन बनवाया गया था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसका उपयोग केवल औपचारिक और कुछ आधिकारिक मामलों के लिए किया जाता था, और इसलिए संभवतः यह न्यायाधिकरण वहां नहीं बल्कि एक प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया था। किसी भी मामले में पॉल निश्चित रूप से बीमा से परिचित था। वह बीमा के बारे में लिखता है, मसीह का न्याय आसन, परमेश्वर का न्याय आसन, वह रोमियो 14 में लिखता है जब वह कोरिंथ से लिख रहा होता है। 2 कुरिन्थियों 5 में वह मसीह के न्याय आसन के बारे में लिखता है। कानून अदालतों को बहुत शोरगुल के लिए जाना जाता है, जिसमें दोनों तरफ गुस्से में चिल्लाते थे, और अगले सत्र में हमें यही देखने को मिलेगा क्योंकि पॉल को गैलीलियो की अदालत में ले जाया जाएगा। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह अधिनियम 18 पर सत्र 19 है। पॉल कोरिंथ आता है।